नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की महाशक्ति की लोक यात्रा।
जी हाँ, और खास तौर पर इसके एक अध्याय पर महामाया समेटने लगी अपनी योग माया।
बिल्कुल, ये पुस्तक वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर है और ये अध्याय उनके जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव को छूता है।
हाँ, उनकी उस समय की आध्यात्मिक स्थिति, उनकी अवस्था, उसे समझने की कोशिश है इसमें।
और ये जो कहा गया है योग माया समेटना, मतलब इसका क्या अर्थ है? एक तरह से शायद अपनी शक्तियों को समेटना।
हाँ, कुछ ऐसा ही, जैसे कोई सिद्ध योगी अपनी लीलाओं को, अपने कार्यकलापों को धीरे धीरे कम करके परम चेतना में लौटने की तैयारी करता है।
अच्छा, तो हम देखेंगे कि कैसे, मतलब सेहत इतनी खराब होने के बावजूद वंदनीय माताजी चित्रकूट अश्वमेध में गईं।
और वो भी तब जब सबने मना किया था, आराम करने को कहा था।
हाँ, लेकिन उनका निश्चय पक्का था। उन्होंने कहा, इस बार मैं जाऊंगी, कौन जाने मेरा कहीं जाना हो या ना हो। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं।
बिल्कुल, एक तो कर्तव्य निष्ठा साफ दिखती है, अपनी संतानों से कितना गहरा जुड़ाव था उनका,
और शायद जैसा आपने कहा भविष्य का कोई आहास
हो सकता है। मतलब ये दिखाता है कि उनकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति शरीर की सीमाओं से कितनी परे थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और चित्रकूट पहुंचकर तो कमाल ही हो गया। लिखा है कि वो जैसे अपने देह के कष्टों को भूली गईं।
जी, उनके साथ जो लोग थे, जैसे शैल दीदी, डॉक्टर पंड्या, वो सब हैरान थे।
हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो गीता में जो स्थित प्रज्ञावस्था बताई है, सुख दुख में एक समान रहना, वैसा अनुभव था।
बिल्कुल, और उसी स्थिति में उन्होंने हजारों लोगों को दीक्षा दी, आशीर्वाद दिया।
अविश्वसनीय, और वो गुप्त गोदावरी वाली घटना, एक छोटी बच्ची वाली।
हाँ, वो भी बहुत मार्मिक है।
उस बच्ची को सपने में सीता मैया दिखी और वंदनीय माता जी को देखकर उसे लगा वही आ गई,
और उसने कुछ जंगली फल और थोड़े पैसे दिए। कितने भोलेपन से,
और माता जी ने भी कितने भाव से उसे स्वीकार किया, पढ़ते हुए भी आंखें नम हो जाती हैं।
सही बात है। देखिए, ये स्थित प्रज्ञावस्था तो महत्वपूर्ण है ही, पर ये बच्ची वाली घटना का भी एक मतलब है।
क्या?
ये दिखाता है कि आम लोगों को, बच्चों तक को, उनमें वो दिव्यता दिखती थी, उनका वो जुड़ाव।
हाँ, और माता जी का वो मौन संवाद कि बेटी मैं तेरे लिए ही यहाँ आई हूँ।
बिल्कुल,
बिना कुछ कहे।
जी,
वो बच्ची की श्रद्धा की स्वीकृति थी, अद्भुत।
लेकिन
ये सब चित्रकूट में हुआ, शांति कुंज वापस आने पर।
हाँ, शांति कुंज लौटते ही तकलीफ फिर बढ़ गई, बहुत ज्यादा।
और जो मॉडर्न इलाज थे वो भी काम नहीं आए।
नहीं, आगरा, दिल्ली, सब जगह दिखाया, फिर उनका आग्रह था अब मुझे शांति कुंज ले चलो,
और वहाँ उस असहनीय पीड़ा को उन्होंने बड़ी शांति से सहा।
बिल्कुल, वो गीता का श्लोक है ना, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते।
हाँ, कि बड़े से बड़े दुख में भी जो विचलित ना हो,
वो साक्षात दिख रहा था उनमें।
जी,
और यहाँ एक बात और समझने वाली है, पुस्तक में संकेत है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं थी।
अच्छा,
मतलब ऐसा माना गया कि उन्होंने अपनी असंख्य संतानों का कष्ट वो अपने ऊपर ले लिया था।
अपने ऊपर?
हो हाँ, इसीलिए उनकी इस बीमारी को विशिष्ट योग साधना कहा गया है।
विशिष्ट योग साधना,
शायद यही वो योग माया समेटने की प्रक्रिया थी, एक तरह से अपनी शक्तियां को, अपनी लीला को समेटना, एक सचेतन वापसी।
और इसी कष्ट के दौरान वो एक और प्रसंग है, चिन्मयी जी वाला।
हाँ, उनके दोहित्र,
उन्होंने पूछा कि अम्मा जी, क्या कोई आपका कष्ट ले सकता है? कितनी मासूमियत से।
और उनका जवाब?
हाँ, वो मुस्कुराई और बोली, अपनी संतानों के कष्ट माँ अपने ऊपर लेती है, मेरे जीते जी मेरी संतानें कष्ट उठाए ये हो ही नहीं सकता।
सोचिए जरा, इतनी पीड़ा में भी वो वात्सल्य, वो करुणा कम नहीं हुई,
बल्कि और बढ़ गई।
जी, ये वो मातृत्व है जो खून के रिश्तों से बहुत आगे है, सभी अनुयायियों के लिए। व्यक्तिगत दुख के चरम पर ऐसी करुणा
कैसे संभव है? ये
शायद ही उनके आध्यात्मिक स्तर का प्रमाण है, वो शरीर के कष्ट से शायद ऊपर उठ चुकी थी, चेतना कहीं और थी।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस अध्याय से वंदनीय माता जी की वो कष्ट से बिल्कुल तटस्था।
हाँ, तटस्था और असीम करुणा,
और बीमारी को भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, एक विशिष्ट योग साधना की तरह देखा।
जी जी, यही शायद अपनी योग माया समेटने का असली मतलब था, शांति और प्रेम से अपनी लीला समेटना, परम चेतना में विलय के लिए। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जो विवरण है ये दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा पीड़ा को भी गरिमा, शांति और प्रेम से सहा जा सकता है।
हाँ बिल्कुल,
तो ये हमारे शरीर, हमारी चेतना और हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य के बीच क्या रिश्ता है, इसके बारे में क्या सिखाता है, खासकर जीवन के अंतिम समय में।
सही बात।
ऐसी सहन शक्ति, ऐसी करुणा, इसको समझने की कोशिश हमारी अपनी मुश्किलों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है, इस पर सोचना चाहिए।